खुदावंद के जलाली नाम में जो मुकद्दस और पाक है, आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, और पालूस रसूल इसके बारे में हमें हुक्म देता है कि फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ। खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, जिस तरह कोई आदमी बोता है वो उसी तरह काटेगा। जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल को काटेगा, और जो कोई रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। तो आज मैं चाहता हूं कि हम पिछले दिनों से, कह सकते हैं कि महीने से, इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कोई हमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, उन बातों पर गौर कर रहे हैं जो हमारी फायदा की नहीं है, जिसमें तुम मेरा बेफायदा नाम ना लेना। जब भी हम खुदावंद की हजूरी में आए तो पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अक्ल और पूरी ताकत के साथ उससे मोहब्बत रखें। और फिर हमने सीखा था वो तमाम रस्मों के बारे में जो इंसान ने शुरू की हुई हैं, जो इंसानी रस्में हैं जिनसे इंसान को कुछ फायदा नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि उन बातों पर गौर करें कि मसीही जिंदगी में वो बेफायदा बातों को छोड़कर हम फायदा की बातों पर गौर करें। आप सबको याद होगा यीशु मसीह का कॉल। किसी को याद है कि यीशु मसीह ने बंदा पालूस रसूल ने क्या कहा था? कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, क्योंकि मसीह वहां पर मौजूद है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? अपने लिए जमीन पर खजाना जमा ना करो, क्योंकि जहां कीड़ा जंग लगाता है, चोर नकब लगाता है और खराब हो जाता है। जो कोई अपना खजाना आसमान पर जमा करता है, वहां पर ना कीड़ा जंग लगाता है ना चोर नकब लगाता है। नकब यानी कि सन लगाना, यानी कि चुराई चोरी करने का तरीका कार या मंसूबा बनाना कि किस तरह से चुरा सकता हूं। तो आज हम देखेंगे दूसरा तमोथियस 3 बाप उसकी 12 आय से पालूस रसूल तमोथियस को उन फायदा की बातों के लिए उसकी तवज्जो उस पर दिलाता है। क्या लिखा है? बल्कि जितने मसीह यसु में दीनदारी के दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। याद है खुदा यसु मसीह ने पहाड़ पर बैठकर लोगों के सामने मत्ती की इंजील 5 बाप उसकी 12वीं आयत में क्या कहा था? मुबारक हो तुम जब लोग मेरे नाम से तुम्हें लान तान करेंगे, सताएंगे, बुरा भला कहेंगे, तो तुम्हारा अजर आसमान पर क्या होगा? बड़ा होगा। पलूस रसूल क्या कहता है? जितने लोग मसीह में दयानतदारी, ईमानदारी, दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब क्या करेंगे? सताए जाएंगे। आप अगर मसीही जिंदगी आज के दौर में गुजारना चाहते हैं तो आज आप पर बहुत से, क्या कहते हैं, कि उंगलियां उठाने वाले होंगे। ये दुनिया है बेटा, ये दरवाजा खोल दें। ये दुनिया है, दुनिया का निजाम है कि दुनिया क्या करती है? किसी से खुश नहीं होती। मैं अंदाजे से कह सकता हूं, जब से चाचा जी उमर के अब्बू आना शुरू हुए, हो सकता है कि रिश्तेदारों में से, हो सकता है कि पड़ोसियों में भी कहना शुरू कर दिया हो कि अब इसे क्या हो गया है कि ये मसीही जिंदगी की तरफ जाना शुरू हो गया है, गिरजाघर में जाना शुरू हो गया है। चाचा जी, मेरा अंदाजा है कि आपसे कभी अभी तक किसी ने कहा है? ये कहा होगा कि क्यों ये खुदा का बंदा खुदा की तरफ जाना शुरू हो गया। जो कोई मसीह में दयानतदारी, ईमानदारी की जिंदगी बसर करना चाहता है वो सताया जाएगा, उस पर लोग उंगलियां उठाएंगे। पालूस रसूल तमोथियस को कहता है कि खबरदार रह, इससे घबरा ना जाना। 13वीं आयत, और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देने और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। जो लोग फरेब में हैं, जो लोग फायदा की बातों को भूलकर बेफायदा बातों में गुमराह हो चुके हैं, वो क्या करेंगे? बिगड़ते चले जाएंगे। जी बहन जी, दूसरा तमोथियस 3 बाप उसकी 13 आयत। बुरे आदमी, धोखाबाजी देने वाले, धोखा करने वाले क्या होंगे? बहुत ही बिगड़ते जाएंगे। उनकी जिंदगी में सुधार नहीं आएगा अगर वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे। मेरे साथ एक हवाला निकालें, मकाशवा की किताब, मकाशवा की किताब उसका 22वां बाप आखिर पर चले जाएं। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं जो यूहन्ना रसूल लिख रहा है और कहता है, मकाशवा 22वां बाप उसकी 11 आयत, 10वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पशीदा ना रख, क्योंकि वो वक्त नजदीक है। हम सबको भी इस किताबे हयात की पोशीदा बातों को, सच्चाइयों को पोशीदा नहीं रखना, दूसरों तक पहुंचाना है कि जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, बुत प्रस्तों का खुदा की हजूरी में कोई फायदा नहीं होगा, झूठे लापरवाह घिनौने काम करने वालों की कोई मेरास नहीं है। 11वीं आयत में क्या लिखा है? लोग बिगड़ते जाएंगे, लोग बुराई की तरफ जाते जाएंगे। 11वीं आयत में क्या लिखा है? जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाता है, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजस है वो नजस ही होता जाए। नजस का मतलब जो बुराई, जो नापाक, बुराई का मतलब बुराई, नजस का मतलब नापाक, गंदे काम, जो नापाकी में जिंदगी गुजारता है वो ज्यादा नापाक होता जाएगा। और क्या लिखा है? और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। सो पालूस रसूल तमोथियुस को कहता है कि अगर तू मसीह के लिए जिंदगी बसर करना चाहता है तो बुरे, धोखाबाज, फरेब देने वाले लोग क्या हैं? दुरुस्त नहीं होंगे, वो बिगड़ते ही जाएंगे। वो बुराई करते हैं, वो बुराई की तरफ ही बढ़ते जाएंगे। सो खुदा का कलाम कहता है जो रास्तबाज है, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या देखेंगे? खुदा को देखेंगे, उनको शेर किया जाएगा। हमारी इस कलीसिया में 300 से ज्यादा घर हैं, कितने रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। मैं आपके बारे में कह सकता हूं क्योंकि आप हर रोज हर सुबह खुदा का कलाम सीखने के लिए सर्दी में आते हैं। उठने से पहले आपके जहन में ये बातें चलती हैं, आज रहने देते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है, ओ दिल नहीं करता, ओ मेरे कदमा च, ओ मेरे सिर च, ओ मेरे पेट च, ओ मेरे मोढ़िया च दर्द होती, आज छुट्टी कर लीजिए। सो आप रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, इसलिए यहां पर आते हैं। सो इसलिए खुदा का बंदा पालूस क्या कहता है? उससे कहता है, मगर तू इन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। पालूस रसूल उसे याद दिलाता है कि जरा याद करके, तू जब ईमान में वफादार नहीं था, जब तुझे ईमान के बारे में नहीं पता था, तो मैंने तुझे बताया और तूने सीखा मुझसे, मुझसे पहले अपनी नानी लुविस से, जो रासबाज और ईमानदार बंदी थी। आज मेरी दुआ है कि आपके खानदानों में आपकी नानियां अगर हैं तो वो नानी लुविस की तरह हो, नानी लुविस की तरह हो, ना के अयूब की बीवी की तरह के लानत करो मर जाओ, बल्कि लुविस। तमोथियस की नानी का नाम क्या था? लुविस। तमोथियस का बाप क्या था? यूनानी था, बुत प्रस्त था, और उसकी मां क्या थी? यहूदी थी, खुदा से डरने वाली, खुदा का खौफ रखने वाली औरत। आज मेरी दुआ है कि हम सब की माएं तमोथियस की मां की तरह खौफ और खुदा की मोहब्बत में जिंदगी गुजारें। आज आप जो शादीशुदा हैं, अपने लिए और आपके लिए मेरी यही दुआ है कि हम तिमोथियस के उस बाप की तरह यूनानी के यूनानी ना रह जाएं, बल्कि मसीही बने। तो क्या लिखा है, उन बातों को याद कर, उनको जो तीन जो जो बातें तूने सीखी थी उन पर कायम रह। और 15वीं आयत, और तू बचपन से उन पाक नविष्टों से वाकिफ है। बचपन से किस तरह उसकी माँ ने, उसकी नानी ने उसे पाक नविष्ते सिखाए, जैसे यहूदी रिवाज था। जब बेटा पैदा होता था तो जब तक वो दूध पीता था, जब तक वो हैकल में नहीं जाता था, माएँ दूध पिलाते हुए उनको याद दिलाती थी कि खुदावंद हमारा खुदा, बनी इसराइल का खुदा, हमें कैद में से निकाल कर लाया। उसने बहरे कुलजम को दो हिस्से कर दिया, उसने आसमान से मन बरसाया, उसने चट्टान में से पानी भेजा, उसने मूसा के हाथ से अजीब अजीब काम मुखे मिस्र में किए और अपने लोगों को उसने रहाई दी। काश आज माएँ भी जब अपने बच्चों को दूध पिलाएं, बजाए अल्लड़ बल्लड़ बावेदा अल्लाह का सो जा ये सुनाने की बजाय, खुदावंद मेरा चुपान है तुझे कमी ना होगी, खुदावंद जिस तरह तूने सैमुअल को चुना मेरे बेटे को चुन, खुदावंद जिस तरह तूने रूथ को चुना गैर कौमों में से मेरी बेटी को चुन, ताकि वो तेरी बरकत और तेरी जलाल का बायस हो। आज माओं को ये करने की जरूरत है, ये फायदा की बातें हैं, ना कि अल्लड़ बल्लड़ बावेदा काना कनक ले आवेगा ते 100 रुपया वटेगी, ये बातें नहीं। क्या लिखा है, पालूस रसूल कहता है, और तू बचपन से उन नपाक नविष्टों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यसु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दिनाई बश्क सकते हैं। बचपन से स्कूल को, इस चर्च को, मेरे दिल की कैरी की और हर जो यहाँ पर काम करता है उन सब की मेरी दुआ है कि यही रोया हो कि एक पीढ़ी आएगी, ये बेटी हारून, काशफ, आतफ, नईम, आपका भाई बेटा बचपन ही से अपने खुदावन के बारे में जाने। 16वीं आयत, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो हमें हिकमत और दनाई बख्श सकता है। इसलिए अगर आज आपके लिए ये कलाम है कि हाँ मैं तो अपने बेटे को यीशु मसीह का गीत सुनाने की बजाय नसीबो लाल के गीत सुनाकर लोरी देती रही हूँ, लोरी देता रहा हूँ, तो उस बात को छोड़ने की ज़रूरत है। सोलहवीं आयत, हर एक सहीफा, सहीफा यानी कि जो बात कलाम खुदा में लिखी गई है, हर एक सहीफा जो खुदा के अल्हाम से है, अल्हाम यानी कि कलाम किया हुआ, जब खुदा ने कलाम अपने नबियों से किया, अल्हाम उसके मुंह का दम, उसके मुंह की बातें, अल्हाम से है तालीम, खुदा का कलाम हमारे लिए किस लिए है कि तालीम हासिल करें, और अल्जाम कि अगर हम मुल्जम हैं तो वो खुदावंद किसी की तरफदारी नहीं करेगा, वो साफ बादशाहों को, वो साफ शहनशाहों को कह देता है। यूहन्ना नबी ने क्या तरफदारी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तरफदारी की थी? नहीं। उसने हेरोदीस से क्या कहा था कि तेरा भाई मर गया है और तू अपनी भाई की बीवी को नजायज तौर पर बीवी बनाकर रखे हुए है। दूसरे लफ्जों में तूने अपने भाई की बीवी को अपनी रखेल बनाया है। उस पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या की, अल्जाम लगाया, उसे मुल्जम ठहराया उसकी बदी के लिए। और असलाह खुदावंद हमारी करता है, जैसे यूहन्ना नबी ने कहा कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और वो खुद खुदा था और वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। खुदा का कलाम हमारी सलाह करता है। जबूर 119 में क्या लिखा है, उसकी गालबन 12 आयत है, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। अगली लाइन क्या है, तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखेया करा ना तेरा गुना, जवान भला किस तरह। सो सलाह, खुदा का कलाम हमारी सलाह करता है कि बुत परस्ती ना करो, खुदा का कलाम हमारी सलाह करता है कि नशाबाजी ना करो, खुदा का कलाम हमारी सलाह करता है कि बिदती ना बनो, खुदा का कलाम हमारी सलाह करता है ऐब जोई ना करो, खुदा का कलाम हमारी सलाह करता है कि गैर मबूदों के आगे ये सर ना झुके, खुदा का कलाम हमारी सलाह करता है ईमानदारी से जिंदगी बसर करो, खुदा का कलाम खावंद और बीवियों से कहता है मुझसे मोहब्बत रखो, खुदा का कलाम कहता है मेरी सुनो। सो हर एक सहीफा जो तालीम और अल्जाम और सलाह और रास्तबाजी में, अगर हम रास्तबाजी का सादा मतलब है दुरुस्त जिंदगी, रास्ते के साथ जिंदगी गुजारना। सपालूस उसूल कहता है कि उन सहीफों को याद रख जो तालीम के लिए, इल्ज़ाम के लिए और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद हैं। इन बातों से हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, फ़ायदा मंद भी है ताकि मर्दे खुदा, मर्द खुदा किसको कहा जाता है, जो खुदा पर ईमान रखता है उसे मर्द खुदा कहते हैं, मर्दे दुआ उसे कहते हैं, जो दुआ करता है उसे मर्दे दुआ कहते हैं। सो ताकि मर्दे खुदा कामल बने, कामल का मतलब यानी कि इस लायक हो, पूरा कारीगर हो। चाचा जी का हुनर है सिलाई का, और अगर एक दिन का कोई शागिर्द वहां पर जाएगा तो वो कामल या कारीगर नहीं बनेगा, उसे टाइम लगेगा। सो पालूस रसूल हम सबको कहता है कि हम जो मर्दे खुदा, मर्दे औरतें खुदा हैं, खुदा के लोग, खुदा की बेटियां, खुदा के बेटे हैं, हम क्या बने, कामल बने, और हर एक काम के, नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, बिल्कुल तैयार हो जाएं। इसलिए हम आज इन सच्चाइयों पर गौर कर रहे हैं कि मसीही जिंदगी में बेफायदा बातों पर नहीं बल्कि फायदा की बातों पर गौर करनी है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं लोरी सुनाने के, तो अपने पड़ोसी के बच्चों को, माँ को, बहन को बताएं कि अल्लड़ बल्लड़ बावेदा नहीं बल्कि फजल नाल ए रब बख्श गुना सब मेरे, याद यहोवा दी सब करणगे कंडे सारी दुनिया दे, बादशाह बादशाह रब खुदावंद बादशाह है, ना ते ना के ये ना के फिल्मी गीत, ना के फिल्मी गीत मेरे जहन में बहुत से आ रहे हैं जो नसीबों के हैं, जो बहुत से दूसरे गीत हैं, उन गीतों को नहीं बल्कि खुदा के कलाम को गाएं। सो मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें, मत्ती की अंजील उसका छठा बाप, मत्ती की अंजील उसका छठा बाप, हम इस पर गौर करेंगे कि हमारे लिए फायदा की बातें कौन सी हैं। इन फायदा की बातों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, हम सब फायदा चाहते हैं, कोई भी नुकसान नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता किसी का मकान गिर जाए, कोई भी नहीं चाहता किसी का नुकसान हो जाए, कोई भी नहीं चाहता किसी को चोर पड़ जाए, हम सब फायदा चाहते हैं। इसलिए आए, जिस्मानी बातों में हम फायदा ढूंढते हैं, रूहानी बातों में गौर करें। मत्ती की अंजील, वक्त कम है इसलिए हम सिर्फ 24वीं आयत पर गौर करेंगे, आए 19वीं आयत से पढ़ें। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाता और चुराता है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर हम दुनिया के हैं तो हम दुनिया में मसरूफ रहेंगे। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से क्या कहा था? तुम दुनिया के नहीं, अगर दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे मोहब्बत रखती। हम दुनियावी नहीं, हम आसमानी हैं। क्या इस सच को हम पचा सकते हैं कि खुदा कहता है तुम जमीनी नहीं आसमानी हो? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लोग कहते हैं, खुदा के खादम कहते हैं, तुम आसमानी नहीं तुम जिस्मानी हो, इसलिए जिस्मानी बातों में जिंदगी गुजारो। इसलिए आप जिस्मानी नहीं रूहानी हैं। अगर आपको मैं जिस्मानी कहता रहूंगा तो जिस्म का फल हर तरह की बेईमानी, हरामकारी, लालच, हसद, झगड़ा, तफरके, बिद्दतें, जुदाइयां, ये जिस्मानी काम है। हम रूहानी हैं, आसमान से भेजे हुए आसमानी लोग इस जमीन पर आरजी तौर पर। ये फायदा की बातें हैं, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। क्या लिखा है 22वीं आयत? बदन का चिराग आंख है, पस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन हो जाएगा। इससे हरगिज मतलब नहीं कि आप काने हैं, आप पहरे हैं, आप भेंगे हैं। ये सिर्फ बात हो रही है तुम्हारे इलम की। अगर तुम्हारी इलम, तुम्हारी रोशनी दुरुस्त है तो तुम्हारी जिंदगी भी दुरुस्त होगी। क्योंकि यीशु मसीह कहाँ यहां पर बात कर रहे हैं? फकीयों और फरीसियों से, जिन पर यीशु मसीह ने कहा, अफसोस तुम पर पखंडियों। आज हमें पखंडी मसीही नहीं बनना। आज हमें नान और हलवे पर ढोल नहीं बजा के तमाल नहीं बानी, ऐसे मसीही नहीं बनने। हमें कैसे मसीही बनना है? ईमानदार। और आप हैं उस ईमान को जो आपने यीशु पर रखा, उसमें कायम रहने की जरूरत है। किसी को इस ईमान को फना करने की इजाजत ना दें। और क्या लिखा है? अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक हो जाएगा। सादा सी बात, अगर हम अंधे हैं तो हम इधर उधर गिरते फिरेंगे। अगर हमारी सोच दुरुस्त है तो हम सही जाबता हयात यानी कि जिंदगी का तरीकाकार सीखेंगे। 24वीं आयत, फायदे की बात, कोई आदमी दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। सादा सी बात, हम दुनिया में रहते हुए दुनिया में रहेंगे लेकिन दुनियावी नहीं बनेंगे। इस सच को हजम करें, आए हम खुदावंद के हजूर झुकें कि कोई आदमी दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे से अदावत रखेगा। खुदा बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं